पूज्य गुरु महाराज के ये शुभ वचन हैं, ध्यान से सुनिए और सुनकर इन शब्दों पर मनन करिए। ऐसा नहीं है ये सुनकर इनको भूल जाएं, बड़े गंभीर शब्द हैं ये। साधना का सार बताया है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। संक्षिप्त में पूज्य गुरु महाराज ने हमें बहुत ऐसा समझा दिया है कि यदि हम उनके वचनों का पालन करें तो हम भी अपने जीवन का जो लक्ष्य है अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तत्पश्चात मनन करिए और उसके बाद कोशिश करिए कि पूज्य गुरु महाराज का पालन करें। हम सबका मन मलिन है, हम माने या न माने ये वास्तविकता है। यदि ऐसा ना हो तो हमारे भीतर में बुरे विचार क्यों उठते हैं? राग द्वेष अहंकार आदि ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं? हम अपने से छोटों पर घृणा करते हैं, अपने से बड़ों पर ईर्ष्या करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा चित्त निर्मल होता नहीं, स्थिर होता नहीं। हम कहते हैं सत्संग में जाते हुए 20 साल हो गए, अभी तक हमें कुछ दिखता नहीं कि क्या हमने किया है। ऐसे भाई लोग हैं जो बहुत ही परेशान हैं। परेशानी भी एक गुण है, परंतु सत्यता ये है, महापुरुष कहते हैं कि संतों महात्माओं की सेवा में बैठकर उनके उपदेश को श्रवण करें, ध्यान से श्रवण करें। श्रवण मनन निध्यासन और वैसा बनना, ये क्रम हम करते नहीं। यहाँ सत्संग में आए, चार शब्द सुने, सीढ़ियाँ उतरते वो भूल जाते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति मनन नहीं करता है, और मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति निध्यासन करता है और कोई ऐसा वैसा बन जाता है। ये हमें बहुत कमी है, बड़ी चंचलता है हमारे इतने। इस ईश्वर की कृपा है कि यहाँ 15-20 मिनट या आधा घंटा हम आराम से बैठ जाते हैं, परंतु ये काफ़ी नहीं है। पूज्य गुरु महाराज के पवित्र वचनों को गंभीरता से सुनिए, गंभीरता से सुनिए और घर जाके 10 मिनट 15 मिनट लगाइए, याद करिए, मनन करिए क्या गुरु महाराज ने क्या फरमाया था। जब तक मनन नहीं करेंगे निध्यासन नहीं बन पाएगा और आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा। जितना मर्जी शास्त्र पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं होगा। मनन आवश्यक है, अति आवश्यक है। मनन के बाद फिर आता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन। जैसा सुना था मनन करके देख लिया, ये चीज़ ये वस्तु ये विचार हमारे हित करेंगे, वैसा बनने की उसकी पवित्र वाणी से जो हम सुनेंगे उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। आप किताबें पढ़ते हैं, इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वही बातें हैं किताबों में लिखी हैं और वही बातें महापुरुष बताते हैं। तो महापुरुष के बताने में ये अंतर है, वो उसका जीवन बोलता है। यदि वो प्रवचन देता है और उसका जीवन प्रवचन के अनुसार नहीं है तो उस प्रवचन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। उन वचनों को बोलने वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन, उसके जीवन का प्रभाव हम पर पड़ता है। जो सच्चा संत होगा वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा। क्यों? उसकी जबान से भी सत्यता निकलती है, उसके शरीर के रोम रोम में से आत्मा की रेशमें निकलती हैं। इसलिए ग्रंथों में संत की महिमा बड़ी गाई गई है, संत को परमात्मा जैसा ही माना गया है। संत के हृदय से आत्मा की रिश्में निकलती हैं, वास्तव में वही प्रसादी, उस प्रसादी के हम भिखारी हैं, और उस महापुरुष से जो शुभ वचन सुनेंगे वो हमारे हृदय में जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। और यदि हमने कुछ मिनट और मेहनत की, परिश्रम किया, मनन किया, तो जो कुछ सुना था वो भीतर में चित्त पर अंकित हो जाएगा, और श्रवण मनन मन करने के बाद उसको व्यवहार में हम लाए वो और सुंदरता फैलाएगा, और उस सुंदरता को और आगे लेकर गए कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हो, हम जैसा प्रभु है वैसे हम बन जाए, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हो, आपका पैर का मिट गया, हमारे और ईश्वर के बीच में जो दीवार थी अहंकार की वो टूट गई, एक जैसे हम हो गए, जो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत सवाना, तब ये ज्योति ये आत्मा परम ज्योति में मिल जाते, मिट गया गमन फिर आवागमन खत्म हो जाते, पाए विश्राम अब आत्मा परमपिता परमात्मा के चरण रज बन गई। नानक प्रभु के सतगुरु ये शब्द पुनः पढ़ते हैं सुनेंगे और अगले सप्ताह इस पर फिर कहेंगे। इस बीच में हो सके तो इन शब्दों को आप बार बार पढ़िए, ताकि अगले सप्ताह जब आए तो चित्त को अधिक धोकर आए, मन को अधिक धोकर आए, इन शब्दों के महत्व हमें पूरी तरह से समझ आ जाए। महापुरुषों का एक एक अक्षर जो है वो सागर रूप है, हम नावल की तरह ऐसी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, ये गलत है। एक लाइन पढ़ें, दो लाइन पढ़ें, दो बार, चार बार, दस बार, जब तक वो समझ ना आए उसका मनन करते जाइए, मनन करते जाइए, तत्पश्चात उन उस वाणी के पवित्र भाव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें, व्यवहार में उतार, फिर धीरे धीरे उन शब्दों के अनुसार आपका रूप भी बदल जाए और वो जैसे शब्द कहते हैं वैसा बन जाए, तब आप सागर के नज़दीक पहुंच गए। कोई देर नहीं लगेगी, सागर अपने आप आपको खींच लेगा, अपने जैसा बना ले, वो बड़ा कृपा निधि है, दया निधि है, वो तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप आएंगे उसकी गोद में। आपको भले प्रसन्नता न हो परंतु प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है, जैसे एक पिता की संतान पढ़ लिख के खूब अच्छी हो जाती है तो पिता संतान को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। बच्चा पिता को देखकर भले आनंदित न हो परंतु पिता अपने पुरुषार्थ की सफलता को देखकर वो बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंदित होता है। इसी तरह परमात्मा है, वही हमारा सच्चा पिता है, उसको जितनी खुशी मिलती है हमको अपनी चरण रज बना के हम अनुभव ही नहीं कर सकते। फिन गुण पीते भक्त न हो, भक्ति का यह अर्थ है साधना, साधना की सफलता तब तक नहीं होगी जब तक ईश्वरी गुणों को अपनाएंगे नहीं। ये बड़ा समय लगता है, घबराना नहीं चाहिए, एक एक गुण में निपुणता प्राप्त करने में जीवन एक जीवन लग जाता है, अधिक समय भी लग जाता है। संक्षिप्त में, जैसा परमपिता परमात्मा है वैसा ही हमें बनना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, इससे कम नहीं है। तू तू करता तू भया तू बनना है, कल क्रिसमस डे है। حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں. جیسے ابھی نویدن کر رہا تھا, مہاپرشوں کے جیون کا دھیان کرنا چاہیے. ان کا دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری چھٹی ہو گئی اور ہم نے بھی گھر میں چھٹی لے کے سمے ویرتھ کیا, کچھ ایشور بھجن نہیں کیا, تو وہ دن منانا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے گنوں کو یاد کرنا ہے. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ وشیش گن تھے فرگیونیس, کھما, پھانسی پر چڑھے ہوئے ہیں اور جلاد رو رہا ہے نیچے. بھگوان کہتے ہیں کیوں رو رہا بھائی, میں پرلوک میں پیچھے پہنچوں گا, تو پہلے پہنچ جائے گا, تو اپنا کاریہ کر. فرید کہتا ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کا بھی سندیش ہے ہمارے لیے, اور برے کرنے والے کے لیے تنک بھی برائی اپنے من میں نہیں رکھتے, اس کو پرلوک میں لے جاتے ہیں. آپ بعد میں جاتے ہیں, اس کو پہلے بھجوا دیتے ہیں, پھانسی چڑھانے والے کو پہلے بھجوا دیتے ہیں. یہ ان کا وشیش گن تھا فرگیونیس. کھما تو کر دیا, پرنتو اس کے ساتھ پریم کرو, گھرنا نہیں کرو. یہ سمجھو میں نے اس کو کھما کر دیا ہے, یہ میرے سے ہین ہے اس لیے میں نے کھما کر دیا, اور اپنی شکتی کو سرائیں, ابھیمان کریں, اہنکار کریں, یہ کھما کرنا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پریم کرو, کھما کرو, پھر پریم کرو. یہاں تک نہیں, اس کی سیوا کرو, تن من دھن سے جیسا بھی ہو سکے اس کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرو. دو عورتیں ان کے پاس آئیں, اندھی تھیں, بھگوان تو دیکھتے تھے مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ بھگوان دیکھ رہے ہیں. پوچھتے پوچھتے وہ ان کے چرنوں میں آئے. حضرت عیسیٰ کا پربھو کے پرتی بڑا وشواس تھا, اور حضرت عیسیٰ سے لابھ ان لوگوں نے اٹھایا جن کے ہردے میں حضرت عیسیٰ کے پرتی وشواس تھا, پرمپتا پرماتما کے پرتی وشواس تھا. وہ عورتیں اتی وشواس کے ساتھ آئیں. ویسے تو ان کی سیوا میں ہزاروں ویکتی گئے, لاکھوں ویکتی گئے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے آدمی کہتے سب کا بھلا ہوا, جیسے وہ لوگ چاہتے تھے ویسا ہو گیا, ایسا نہیں. دو دن ہوئے میں نے ایک جرنل پڑھا, اس میں یہ لکھا تھا, دو چار لائنیں اس پیچھے میں تھی. تو میری آپ سے پوچھ پڑھ کے مجھے بھی پریرنا ملی کہ میں آپ سے انوروھ کروں کہ ایشور کے پرتی, گرو کے پرتی شردھا اور وشواس دن بہ دن بڑھاتے جائیں. یہ بھی سادھنا. وہ کہتے ہیں اندھ وشواسی ہونی چاہیے, ستیتا ہے اندھ وشواسی اور سلتا ہے. اور مجھے اس دن سے, یعنی پرسوں سے, میرے من میں شنکا رہتی تھی, تو میں اب سوچتا ہوں کہ میں غلط تھا. جو شبد اس کتاب میں لکھے ہیں اسے آپ مندروں میں جاتے ہیں, جو شردھا اور وشواس سے جاتے ہیں, مندر, گرودوارا, مسجد, جو بھی چھانا ایشور کا, یدی آپ شردھا اور وشواس سے جاتے ہیں تو بھگوان مورتی کی پوجا کے روپ میں وہاں براجمان ہیں, اس مورتی سے بھی لابھ ہوتا ہے. اور جو پڑھا لکھا ویکتی جاتا ہے, جو اپنے آپ کو وویکی سمجھتا ہے, وہ ترک کرتا ہے, اس کو لابھ نہیں ہوتا. یہ بات مجھے دو دن ہوئی کہ مجھے گیان پراپت ہو. پربھو سب جگہ ہیں, یہ کیا ہے, مورتی ہے پتھر کی, تو کیا ہو. گرودوارے میں ہیں, پستک رکھیے, تو کیا ہوگا. क्या वहां परमात्मा नहीं है? गिरजे में क्या हो गया अगर से बस ईसा की मूर्ति है, क्या हो गया? विश्वास और श्रद्धा, ईश्वर सर्वव्यापक है। आप मूर्ति को लेकर पूजा करते हैं तो ईश्वर आपकी आवाज सुनते हैं। अवश्यता ये है कि हम श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। एक तरह हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, तो क्या ईश्वर मंदिर में सर्वव्यापक नहीं है? ईश्वर गुरुद्वारे में नहीं है? ईश्वर मस्जिद में नहीं है? गिरजे में नहीं? हमारी आवास में कमजोरी, हमारे विरह में कमजोरी है, हमारी प्रार्थना में कमजोरी। वो तो सब जगह है, कमरे बंद कर लीजिए तब भी वहाँ वो आपको उसके दर्शन वहाँ होंगे। और जिनमें दृढ़ विश्वास है उनको वहाँ दर्शन होते हैं। तो उन दो औरतों को उन्हें बुलाया कि चलो कमरे में, उनको नजर नहीं आ रहा है तो पीछे, परंतु उनमें श्रद्धा और विश्वास है कि वो उनकी सेवा में आए। उनसे पूछा है हजरत ने, आप कैसे यहाँ पहुंचे? वो सरलता से कहते, हमें नहीं मालूम आप ही खींच लाए हैं। दोनों की आंखों में प्रेम के चक्षु बह रहे हैं। और हजरत कहते हैं, सिस्टर्स बहने आंखें खोल, बहुत समय के बाद आंखें खुली नहीं, देर लगी खोलने, परंतु चक्षु सामान्य हुए। और क्या स्थिति थी उन औरतों की, बहनों की? प्रेम अश्रुओं की नदी बह रही थी। उस पुस्तक में लिखा है कि हजारों व्यक्ति हजरत ईसा की सेवा में गए, सबका उद्धार नहीं हुआ, उन्हीं का उद्धार हुआ जिनके हृदय में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास था। इतनी आयु के बाद ये दो शब्दों की वास्तव मीनिंग मुझे परसों मिली। कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए किसी बात का। व्यक्ति का मन देखो, मन के साधे सब से। मन सध जाएगा तो ईश्वर तो समीप आ ही जाएगा किसी तरीके से। सब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मैं भी आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूं, मैं भी विश्वास नहीं करता। उन्होंने उनमें से कितने आदमी हैं जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए? तो कभी भी भूल कर किसी की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कोशिश हम सब की, चाहे हम आर्य समाजी हैं, चाहे सनातनी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, ईश्वर बाप हमारा एक ही, सबका एक है। और सबके हृदय में वो श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। परमात्मा नहीं देखता कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए, सरदारों के पहने, मुसलमानों के पहने, कि हिंदुओं के पहने, ईसाइयों के पहने। ये जितने धर्म दिखते हैं ये सब मनुष्यों के हैं। संतों ने विभाजन नहीं पैदा किया, किसी भी संत को चाहे किसी धर्म का हो, ये मनुष्य ने किया, उनके बाद ने किया। अपने भोजन को देखिए, अपने वातावरण को देखिए जिस वातावरण में आप रहते हैं, और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, पवित्रता लाइए। और ऐसा समाज, ऐसे समाज में प्रवेश करें, ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे संतों की चरण रज लें कि आपके हृदय में कोमलता है, कोमलता। आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, वो रो रहा है, तीन दिन से रोटी नहीं खा रही, आपके हृदय में ये शब्द ये भावना नहीं उत्पन्न हो कि ये तो ठग है कि पैसे इकट्ठे करके जाएगा घर जाके जुआ खेल, आपकी टांगे वहीं रुक जाए, पांव रुक जाए, वो भले ही बनापी हो परंतु आपका हृदय बनापी न बने। यदि गलती से किसी बनावटी व्यक्ति की भी आपने सेवा कर दी है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। हृदय को बुद्धि को कोमल बनाए, अति कोमल, अति एक बूटी आती है क्या नाम, जरा हाथ दो चार इंच पीछे रखो तो आपके हाथ से वो झुक जाते, उसके पत्ते झुक जाते और आप हाथ उठा लेते हैं, वो फिर नॉर्मल समान स्थिति में आ जाए। इसी तरह हम किसी का दुख देखें तो हमारे हृदय में सहज में ही कोमलता उत्पन्न हो जाए और उत्साह उत्पन्न हो जाए और उस व्यक्ति की दुख व्यक्ति का हम दुख दूर कर प्रयास कर, करने वाला तो प्रभु है, हम कौन। अपने भीतर में कोमलता उत्पन्न करो, कोमल और ये सहज स्वभाव बन जाए। किसी की सेवा करके ढंडोरा मत पीटो कि मैंने ये काम किया वो काम। हमारी संस्कृति है गुप्त दान करना, अपने आप को गुप्त रखना, शोर नहीं मचाना। आपका स्वभाव बोले, आपके आपकी वाणी नहीं बोले, इसको सहज अवस्था कहते हैं। आप में सहजता आ जाए कि आपके से कोमलता, दूसरे के प्रति सद्भाव, बिना प्रयास के बह रही है, उस महान हस्ती का दिन मनाने का मतलब यही है कि उनके जीवनी के जितने गुण थे उनको ध्यान से सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश। गॉड इज लव, गॉड इज लव, और इंसान को क्या करना है, परमात्मा के गुणों को अपनाना है। फॉरगिवनेस पहला गुण है, फॉरगिवनेस, परमात्मा के गुण लेके हमें भी प्रेम रूप बनना है, सबसे प्रेम करना है। एक तरफ कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा वो तर्पण कर ले, अच्छा भी दूसरी तरफ भी लगा ले, ऐसी दीनता सर्विस सेवा। कर्म करते हुए नए काम, सेवा करते हुए निस्वार्थ कार्य कर, उसमें ये मत सोचें कि इसमें मेरा हित सिद्ध हो जाएगा, नहीं, दूसरे के हित की सोचें, दूसरे के स्वार्थ को सोचें, दूसरे के लाभ को सोचें, अपने लाभ को नहीं। आपका लाभ जो है वो चंद्रगुप्त अपनी किताब में अंकित कर रहे, आप चिंता मत करें, वो लिखते रहते हैं।